लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम मानव का जीवन एक यात्रा है। हम सभी एक यात्री की भांति अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा हम नहीं जानते। हमारी इस यात्रा की समाप्ति कब, कहां और कैसे होगी हम में से कोई नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे हम विश्वास में अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाते, वैसे वैसे हमारे लिए जीवन के मार्ग खुलते जाते हैं। इस भांति हम अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों में पहुंचते, जहां हमें बहुत सारी नई चीजें, नए लोग मिलते हैं जो हमें जीवन की सीख देते और हमारे जीवन को अनुभव रूपी अमूल्य निधि से भर देते हैं। श्रोताओ, हमारे जीवन का हर कदम और हर पड़ाव हमारे लिए एक अति महत्वपूर्ण उपहार लेकर आता है, जिसे केवल हम व्यक्तिगत रूप में जान और अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी आंखें और ज्ञान इंद्रियां खुली हों, हम इस बात के लिए सजग हों कि हमें क्या हो रहा है। वर्ष के 16वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के जीवन यात्रा में एक ऐसे ही पड़ाव का जिक्र करता है, जो हमें अपने जीवन में इस तथ्य को देखने और विचार मंथन करने हेतु निमंत्रण देता है कि हमारे लिए क्या अति आवश्यक है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न बातों और चीजों में खोए रहते हैं, जिसके कारण हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या अति जरूरी है। आइए हम सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी वचनों का पान करें, जो हमारे लिए इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे लिए क्या अति महत्वपूर्ण है।
ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी, जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के जीवनदायी वचन हमें इस बात की आवश्यकता को जानने और समझने में मदद करे कि हमारे जीवन के लिए अति जरूरी चीज क्या है, जिससे हम उसकी खोज में अपने जीवन की शक्ति को व्यय कर सकें। श्रोताओ, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए विश्वास के पिता अब्राहम के पास तीन व्यक्तियों के रूप में स्वयं ईश्वर के आगमन की बात कहता है। अब्राहम उन तीन तीर्थयात्रियों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते और बड़ी तत्परता से उनका अतिथि सत्कार करते हैं। उनका स्वागत करते हुए वे उनकी अहोभगत करते और उन्हें जलपान कराते हैं। अपने सेवक की सेवा से खुश ईश्वर अब्राहम को उनकी सेविकाई के बदले पुत्र रतन का अनमोल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं एक वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। श्रोताओं, सेवा वह ईश्वरीय गुण है जिसके द्वारा हम ईश्वर के आशीषों और कृपाओं को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। हमारी सेवा हमारे लिए ईश पुत्र प्रभु येसु ख्रिस्त के मनोभावों को व्यक्त करती है, जो कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपना जीवन देने आया हूँ। अपनी सेवा पूर्ण कार्यों के द्वारा हम स्वयं येसु ख्रिस्त के गुणों को इस तरह अपने में जीते और उन्हें आत्मसात करते हैं। और क्योंकि हमारी निस्वार्थ सेवा दूसरों के लिए आनंद और सुकून का कारण बनती, यह हमें ईश्वरीय वरदानों के योग्य बनाती है। श्रोताओं, मानवीय जीवन का सार दूसरों की सेवा करने में है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। पहले पाठ में एक दूसरा तथ्य हमारे लिए यह है कि ईश्वर के रूप को हम अपने मध्य अपने भाई बहनों में देखते हैं, जिनकी सेवा करने हेतु हम सभी बुलाए गए हैं। अपने पड़ोसियों की सेवा और एक दूसरे की सेवा हमारे लिए ईश्वर को आदर देना और उन्हें प्रेम दिखलाना है, जिससे हम बहुधा अपने जीवन में चूक जाते हैं। हम ईश्वर को देखने और खोजने हेतु गिरजाघरों मंदिरों मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन अपने निकट व्यक्ति के रूप में ईश्वर की उपस्थिति को हम नहीं पहचान पाते हैं। श्रोताओं, कलुसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम सुसमाचार की सेवा में संत पौलुस के मनोभावों का जिक्र सुनते हैं। वे सुसमाचार की सेवा में अपने भाइयों के लिए कष्ट सहते, जो उन्हें खुशी प्रदान करती है। कलीसिया के सेवक स्वरूप वे सुसमाचार का प्रचार करते हुए दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बनते हैं। यीशु ख्रिस्त पिता के द्वारा मिले सुसमाचार को सुनाने हेतु एक सेवक बनकर हमारे बीच आए और सारी मानव जाति के खातिर घोर दुख का सामना किया। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए इस रहस्य को प्रकट करता है कि ईश्वर मानव के रूप में हमारे बीच निवास करते हैं। उस ईश्वर की उपस्थिति को हम दूसरों की सेवा करते हुए अपने कार्यों में घोषित करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हम यीशु को मार्था और मरियम के घर में एक अतिथि स्वरूप आते सुना। यीशु स्वयं हमारे हृदय रूपी घर में एक मेहमान की भांति आते हैं। वे हमारे साथ रहना चाहते और अपनी बातों को हमें सुनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके निकट उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुने, लेकिन हम मार्था की भांति अपने जीवन की बहुत सारी बातों में उलझे रहते, जिसके कारण हम उनकी ज्ञान भरी बातों को सुनने में असमर्थ होते हैं। वहीं मरियम ने अपने लिए एक बेहतर भाग को चुना, जो उसके लिए संपूर्ण आनंद और खुशी का एक उद्गम बनता है, जो किसी अन्य दूसरी चीजों के द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव के लिए यीशु मरियम की प्रशंसा करते हैं। श्रोताओं, आज के पाठ सही चुनाव हेतु हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हैं। हम जीवन में जिन चीजों का चुनाव अपने लिए करते हैं, वे हमारे लिए आनंद और खुशी का कारण बनती है। लेकिन हमारे लिए सच्ची और अनंत खुशी तब मिलती है जब हम अपने लिए एक अच्छी और बेहतर चीज का चुनाव करते हैं। आइए हम अपने में रुककर इस बात की थाह लें कि वह कौन सी चीज है जो हमें सच्ची खुशी प्रदान करती है। क्या हमने उस अनमोल वस्तु को अपने जीवन में पहचाना है, या क्या हम क्षणभंगुर चीजों में ही अपने को घेरा पाते हैं, जिनसे मिलने वाली खुशी मिनटों में ही खत्म हो जाती है।
तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अल्तग्रासा की कुंवारी मरियम के राज्याभिषेक शतवर्षी जयंती के अवसर पर डोमिनिकन गणराज्य की जनता को संदेश भेजा है। अल्तग्रासा की कुंवारी मरियम का पहला राज्याभिषेक 15 अगस्त 1922 को हुआ था, जब संत पापा पियूस 11वें डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा पर थे। शतवर्ष जयंती की तैयारी कर रहे डोमिनिकन गणराज्य के लोगों को संदेश देते हुए संत पापा ने कहा, आप इसमें जो मरिया भक्ति का अनुभव करते हैं वह ख्रिस्ते मूल का चिन्ह है, जो आपकी विशेषता है एवं आपकी भूमि को जीवन प्रदान करता है। यही कारण है कि मैं आप लोगों को माता मरियम के आदर्श एवं मध्यस्थता द्वारा यीशु और कलीसिया के प्रति प्रेम से विश्वास में नहीं डगमगाने, उसकी रक्षा करने और उसे सुदृढ़ बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। डोमिनिकन राष्ट्र के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मेरी ओर से मोनसिन्योर एडगर पेना पारा को राज्य सचिवालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहता हूँ। मैं उनसे अल्तग्रासा की माता मरियम के चरणों में पोप की पुत्र तुल्य श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह करता हूँ। ओडिशा के बेरहमपुर धम प्रांत ने पर्यावरण के मुद्दे को गंभीरता से लेने का संकल्प लिया है। पर्यावरण की रक्षा हेतु जागरूकता लाने के लिए मोहन टिनरी के अनुग्रह पीठ में वन उत्सव मनाया गया। मोहन टिनरी के विभिन्न पारिशों से करीब 150 लोग इस उत्सव में भाग लेने आए। अपने परिसर में पौधे लगाने के अलावा केंद्र पुनः प्रयोग और कम उपयोग की नीति के तहत प्लास्टिक का उपयोग बंद करेगा। केंद्र बैनर और फ्लैग स्पोर्ट का प्रयोग नहीं करने बल्कि कपड़ों, जूट या धागे से बने बैग के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा। भोजन की बर्बादी कम करेगा एवं डिस्पोजल प्लेट और कप का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करेगा। पेयजल के लिए भी प्लास्टिक बोतलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लोग कपड़ों के झंडे एवं प्राकृतिक चीजों जैसे पत्तों और फूलों से सजावट एवं बैनर बनाने का काम करेंगे। अनुग्रह पीठ ने यात्रा हेतु लोगों को बसों एवं सार्वजनिक ऑटो रिक्शों का प्रयोग करने तथा ईंधन की खपत से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर सामग्री की खरीद की सलाह दी है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली सार्वजनिक जीवन को बाधित न करे। दूसरी सलाहें हैं दिन के प्रकाश एवं सोलर ऊर्जा का प्रयोग करना एवं साल भर छोटे पौधे लगाना। इसकी प्रेरणा सेक्रेट हार्ट के धम्भन सुजाता जाना से मिले, जिन्होंने उत्सव में मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे आध्यात्मिक मन परिवर्तन के हिस्से के रूप में हमें अपने आप में एवं अपने आसपास ठोस प्रयासों के द्वारा बदलाव लाना है एवं विभिन्न जैव विविधता के सेहत को बनाए रखने के लिए सहयोग देना है और इस तरह हमारे आम घर का निर्माण होगा। नाइजीरिया के कफांचन धर्म प्रांत ने जानकारी दी है कि फादर जॉन मार्क चेंतुम और फादर डोनातुस क्लियोपस का अपहरण हो गया है। फादर जॉन मार्क चेंतुम और फादर डोनातुस क्लियोपस का अपहरण 15 जुलाई को शाम 4:15 बजे हुआ। कफांचन धर्म प्रांत द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे दो पुरोहितों फादर जॉन मार्क चेंतुम और फादर डोनातुस क्लियोपस का अपहरण हो गया है। दोनों पुरोहितों का अपहरण उस समय हुआ जब वे एक कार्यक्रम के कारण विभिन्न पल्लियों की यात्रा कर रहे थे।
धर्म सभा प्रस्ताव सभी लोगों की ईश्वर प्रदत्त मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने का एक वैध तरीका है। कार्डिनल माइकल चर्नी ने लैटिन अमेरिकी धर्माध्यक्ष सम्मेलन चेलम के धर्माध्यक्षों से कहा, जो इस सप्ताह 3 साल के नवीनीकरण का मूल्यांकन करने के लिए बोगोटा में मिले थे। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कलीसिया के धर्माध्यक्षों की आम सभा 11 से 14 जुलाई तक कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित की गई। समग्र मानव विकास की सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा, हम अपने लिए क्या चाहते हैं? हमें तार्किक रूप से दूसरों के लिए बढ़ावा देना चाहिए और इसलिए ईश्वर के सभी लोग, दुनिया के सभी धर्माध्यक्ष और रोमन कुरिया के साथ संत पापा उन लोगों के अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से गरीबों को जिन्हें इससे वंचित रखा जाता है। उन्होंने याद किया कि द्वितीय वाटिकन परिषद ने आदेश दिया था कि कलीसिया को समग्र मानव विकास के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन ठोस वास्तविकताओं को जो हमारी उपलब्धि में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा, इस युग के पुरुषों की खुशियां और आशाएं, दुख और चिंताएं, विशेष रूप से वे जो गरीब हैं और किसी तरह से भी पीड़ित हैं, वे कलीसिया की आशाएं और दुख भी हैं जिनके साथ वह मुक्ति के संदेश को साझा करना चाहती है। अपनी ओर से कार्डिनल चर्नी ने इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में किए गए सकारात्मक अनुभवों, क्षेत्रीय और विषयगत नेटवर्क की स्थापना सहित सेमिनारों और बैठकों की चर्चा करते हुए कहा, उन्हें पूरा विश्वास और उम्मीद है कि परम धर्म पीठ ये समग्र मानव विकास विभाग और चेलम एक साथ आगे बढ़ेंगे। लैटिन अमेरिका ने अपनी धर्म सभा प्रक्रिया के लिए बहुत उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है, जो उन्हें यीशु के उदाहरण और संत पापा फ्रांसिस के संकेत पर आपस में सुनने, साथ देने और पारस्परिक सेवा में प्रवेश करने में सक्षम बनाएगा। शुक्रवार को असाधारण सभा के समापन पर चेलम ने एक अंतिम संदेश जारी किया, जिसमें सुनने, इसकी संरचनाओं को बदलने, दुनिया के साथ बातचीत करने की लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन कलीसिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। उधर श्रीलंका के राजपक्षे परिवार के दशकों का शासन शुक्रवार को उस समय समाप्त हो गया जब देश की संसद के अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कारितास श्रीलंका के निदेशक फादर महेंद्र गुनाटिल्के ने वाटिकन समाचार से देश की दुर्दशा के बारे में बातें की। उन्होंने कहा, हम अभी मानवीय संकट से गुजर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। कलीसिया जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने सभी संसाधन जुटा रही है। कारितास श्रीलंका भोजन और स्वच्छता सेवाएं प्रदान कर रही है। देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बौद्धों, हिंदुओं और मुसलमानों सहित अन्य धार्मिक समुदायों के साथ साथ कैथोलिक कलीसिया भी काम कर रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।